नमस्कार भारत, तारीख 15 नवंबर, दिन गुरुवार, मैं हूं मानसी दास। यूरोपीय संघ से बाहर जाएगा ब्रिटेन, कैबिनेट ने लगाई प्रस्तावित समझौते पर मुहर।
The cabinet has just had a long, detailed and impassioned debate on the draft withdrawal agreement.
रफाल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, क्या बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाएगा रफाल?
ये नहीं कहा जा सकता कि एविडेंस है कि करप्शन हुआ इसमें, जितना कांग्रेस वो अलेज कर रही है ना, वो लिंकेजेस अभी किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो बहुत उठ गए हैं।
और दुनिया जहान में आज बात बांग्लादेश की सियासत के दो प्रमुख चेहरों की।
जो खालिदा जिया पे जो आरोप लगे हैं और जो कन्विक्शन हुआ है 10 साल का करप्शन के केस को लेके, ये उनकी डिमांड है कि जो ये सारे चार्जेस।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। ब्रिटेन में कैबिनेट ने यूरोपीय संघ से बाहर जाने से संबंधित समझौते के मसौदे पर अपनी सहमति दे दी है। 5 घंटों तक चली कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से 9 साल बाद एरिटेरिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। एरिटेरिया पर सोमाली के जिहादी समूह अल शबाब का समर्थन करने के आरोप में हथियार से लेकर यात्रा प्रतिबंध तक लगाए गए थे। इथोपिया के नए प्रधानमंत्री एबी अहमद के सत्ता में आने के बाद से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले देशों यानी इथोपिया, जिबूटी, इथोपिया और सोमालिया के बीच तकरार कम हुई है। संयुक्त राष्ट्र में इथोपिया के राजदूत तैया अत्सका सेलासी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, इथोपिया बिना किसी संदेह के एरिटेरिया पर प्रतिबंध हटाने के फैसले का स्वागत करता है। हमें विश्वास है कि ये फैसला हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो रहे बड़े राजनीतिक बदलावों के बीच सही समय पर आया है। गजा के साथ संघर्ष विराम के फैसले के विरोध में रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। इजरायली सरकार ने सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच 2 दिनों से चल रहे संघर्ष को रोकने का फैसला लिया है। रक्षा मंत्री ने इसे आतंक के खिलाफ घुटने टेकने वाला बताया है। वहीं फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी ने इसे इजरायली सरकार में चल रहे सत्ता संघर्ष की निशानी बताया है। उन्होंने कहा, हमें लिबरमैन के इस्तीफे से कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि यह साफ है कि गजा पट्टी में स्थिति को लेकर उनकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से असहमति है और ये इस्तीफा इसी ओर इशारा करता है। ये थे फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलिकी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज़ ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सीएनएन के मुकदमे का समर्थन किया है। यह मुकदमा व्हाइट हाउस के सीएनएन के संवाददाता जिम एकोस्टा की मान्यता रद्द करने के फैसले के बाद किया गया है। फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों को मिले पास को हथियार नहीं बनाना चाहिए। इस विवाद के बाद जिम एकोस्टा से प्रेस हार्ड पास वापस ले लिया गया था। हंगरी की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि मैसेडोनिया के पूर्व प्रधानमंत्री निकोला ग्रुएवेस्की हंगरी में हैं और उन्होंने सरकार से राजनीतिक शरण देने का अनुरोध किया है। निकोला ग्रुएवेस्की को मई में भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हंगरी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि राजनीतिक शरण एक कानूनी मसला है और हंगरी मैसेडोनिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्तेजक ट्वीट से पैदा हुई बहस में नहीं पड़ेंगे। ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में फ्रांस को दुनिया का सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी देश कहा था। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस नए खतरों का सामना कर रहा है और उसे खुद को पुनः तैयार करना जरूरी है। दोनों देशों के बीच यह बहस तब शुरू हुई थी जब इमैनुअल मैक्रों ने समान यूरोपीय सेना का समर्थन किया था। ईरान में 2 टन सोने के सिक्कों के साथ गिरफ्तार हुए वहीद मजलूमीन और उनके साथी मोहम्मद इस्माइल गोसेमी को बुधवार की सुबह फांसी दे दी गई है। उन दोनों को अदालत ने भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के मामले में कसूरवार ठहराया था। इनमें वहीद मजलूमीन को पुलिस सिक्कों के सुल्तान भी कहती थी। क्यूबा ब्राजील के साथ एक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम रद्द कर रहा है। ब्राजील के प्रधानमंत्री जैर बोल्सोनारो के इस कार्यक्रम की शर्तों में सुधार की बात कहने के बाद ये कदम उठाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत ब्राजील में सेवाएं दे रहे क्यूबा के हजारों डॉक्टर्स के लिए क्यूबा को लाखों डॉलर दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को इस राशि का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। इस पर जैर बोल्सोनारो का कहना है कि डॉक्टर्स को पूरा वेतन मिलना चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से, जहां बीता दिन बेहद हलचल भरा रहा। लंदन में कैबिनेट के मंत्रियों की 5 घंटे लंबी बैठक चली, जहां चर्चा का मुद्दा था ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने का प्रस्ताव। अब से कुछ घंटे पहले कैबिनेट ने ब्रेक्सिट के प्रस्तावित मसौदे पर मुहर लगा दी है। 585 पन्नों वाले इस मसौदे में ब्रेक्सिट की प्रक्रिया को पूरा करने के 2020 तक के समय के बारे में जानकारी, ब्रिटेन में रहने वाले यूरोपीय संघ के सदस्यों के अधिकार और यूरोपीय संघ के देशों में रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकारों और ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ को चुकाई जाने वाली राशि से जुड़ी जानकारियां हैं। और अब इसके बाद इस पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के नेताओं की बैठक भी जल्द होने वाली है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
ब्रिटानी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने से संबंधित समझौते के प्रस्तावित मसौदे पर मुहर लगा दी है। 5 घंटे चली बैठक के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कैबिनेट ने अभी यूरोपीय संघ से अलग होने के मसौदे पर एक लंबी और विस्तार पूर्वक चर्चा की है। यह दस्तावेज ब्रिटेन के अधिकारियों की हजारों घंटों की ठोस वार्ता और मेरी व अन्य मंत्रियों की यूरोपीय संघ के साथ की गई कई बैठकों का नतीजा है। हमारे सामने मौजूद विकल्प बहुत मुश्किल है, खासतौर पर उत्तरी आयरलैंड के संबंध में, लेकिन कैबिनेट ने सामूहिक रूप से इस मसौदे पर सहमति जताई है। ये थे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। गुरुवार को टेरेसा मे ब्रितानी संसद में इस फैसले पर बयान देंगी। हालांकि इस ब्रेक्जिट मसौदे को लेकर टेरेसा मे को विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इस संबंध में पूर्व ब्रितानी प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का कहना है कि प्रस्तावित ब्रेक्जिट समझौते से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा,
Do you want to leave? In which case people like me, if the country votes again to leave, that's it, that's an end of the argument.
क्या आप छोड़ना चाहते हैं? अगर देश फिर से छोड़ने के पक्ष में फैसला करता है तो इस पीढ़ी के लिए बहस यही खत्म होती है। अगर आप रहना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि अगर ऐसा होता है तो यूरोपीय संघ ब्रिटेन के लिए एक अलग पेशकश लेकर आएगा, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में यूरोप की राजनीति नाटकीय ढंग से बदली है। ये थे ब्रितानी प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। वहीं ब्रेक्जिट के समर्थक माने जाने वाले जैकब रीस-मॉग ने इस समझौते को वादा तोड़ने वाला बताया है। इसे संसद में वोट के लिए लाना होगा, और अगर ये वो है जो हमें उम्मीद है तो मैं इसके खिलाफ वोट दूंगा। मुझे उम्मीद है कि दूसरे भी यही करेंगे। यह जनमत के नतीजों और कंजर्वेटिव पार्टी के वादों से उलट है। यह मसौदा 585 पन्नों का है। इसमें साल 2020 तक चलने वाली ब्रेक्जिट के बाद के बदलावों की अवधि, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नागरिकों के लिए गारंटी और यूरोपीय संघ को वित्तीय विवरण देने की ब्रिटेन की प्रतिबद्धता जैसे मसले शामिल हैं। ब्रितानी कैबिनेट के इस फैसले के बाद ब्रेक्सिट पर यूरोपीय संघ के मुख्य मध्यस्थ माइकल बार्नियर ने कहा है कि ये दोनों पक्षों के हित में होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2020 जुलाई तक ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा और इसके लिए समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। रुक करते हैं भारत का। रफाल विमान सौदे में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 3.5 घंटे तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं और सरकार की ओर से तर्क रखे गए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कल क्या कुछ हुआ और क्या आने वाले दिनों में चुनावी माहौल पर इस मामले का कुछ असर पड़ेगा, सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। अदालत ने कहा कि उन्हें फैसला लेना है कि क्या कीमत से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। महाधिवक्ता के वेणुगोपाल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अदालत इसकी न्यायिक समीक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि यह काम विशेषज्ञों का है और संसद को भी विमानों की पूरी कीमत के बारे में नहीं बताया गया है। इस सौदे से जुड़े तकनीकी सवालों पर जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा, विनीत ढांडा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के अलावा पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण शामिल हैं। संजय सिंह ने इस मामले में कहा,
जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पिछली तारीख पर आदेश दिया था उसको लेकर सरकार ने एक जवाब दिया है। वो जवाब बहुत ही गोलमोल सा जवाब है, उसमें बहुत सारे तथ्यों को छुपाया गया है और जो जवाब उन्होंने दिया है उसके काउंटर पॉइंट्स जो बनते हैं, जो उनके जवाब से ही जो सवाल निकल के आते हैं, वो इस राफेल के महाघोटाले को और सच साबित करते हैं और पुख्ता साबित करते हैं और मजबूत साबित करते हैं।
सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वेणुगोपाल ने कहा कि अगर विमानों में लैस किए जाने वाले हथियारों और अन्य तकनीकी चीजों के बारे में जानकारियां सार्वजनिक की गईं तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। सरकार की ओर से अदालत में ये भी कहा गया कि वो कीमतें सार्वजनिक करके फ्रांस के साथ हुए समझौते का उल्लंघन नहीं करना चाहते। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार गोपनीय समझौते के पीछे छुप रही है। इसी मामले में वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती ने बताया कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा कि ये सौदा करने में सरकार ने विशेषज्ञों और DSC यानी डिफेंस सेलेक्ट कमेटी की राय भी नहीं ली है। सुचित्रा मोहंती ने कहा,
जितना सारा इलीगल काम हुआ है डिफेंस डील में तो वो सारा कुछ लोगों के सामने आया है। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, ये लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि प्राइसिंग में यहां पे काफी गड़बड़ी किया इन लोगों ने। 670 या 700 करोड़ के लगभग के जो राफेल एयरक्राफ्ट है उसको बहुत ऊंचे दामों में खरीदा गया है। कोर्ट के ऊपर ये अभी निर्भर करता है कि कब इसका जजमेंट आया, लेकिन ये तो तय है कि कोर्ट चाहे डिसमिस करेगा या अलाउ करेगा।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि राजनीतिक दल इसे अपने अपने हिसाब से चुनावी रैलियों में इस्तेमाल करते जा रहे हैं। क्या राफेल सचमुच में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाएगा? इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा।
आए दिन एक सवाल उठते जाते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि एविडेंस है कि करप्शन हुआ इसमें, कि प्लेन का दाम बढ़ा और वो अनिल अंबानी को ऑफसेट डील दिया गया और वो पैसा बीजेपी के पास गया। वो लिंकेजेस अभी ना कांग्रेस वो अलेज कर रही है ना वो लिंकेजेस अभी किए जा सकते हैं, लेकिन सवाल तो बहुत उठ गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे में क्या फैसला सुनाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस लड़ाकू विमान पर चुनावी जंग आने वाले दिनों तक जरूर लड़ी जाएगी। नवीन नेगी, BBC दिल्ली।
दिल्ली से सटे हरियाणा की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चौटाला परिवार में चल रहे विवाद के बीच इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनलो के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने कल अपने बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया। अजय सिंह चौटाला पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगा है। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि ये फैसला षड्यंत्र के तहत लिया गया है। सुनिए चंडीगढ़ से अरविंद छाबड़ा की रिपोर्ट।
मैं तुरंत प्रभाव से अजय सिंह चौटाला को राज्य इकाई के प्रधान महासचिव पद से और उनकी पार्टी सदस्यता से निष्कासित करता हूं।
बुधवार को जब इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने अजय चौटाला को पार्टी महासचिव और प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किए जाने का ऐलान किया तो ये साफ हो गया कि चौटाला परिवार और पार्टी में मचा अंदरूनी घमासान जारी है। अरोड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय के भाई अभय चौटाला भी मौजूद थे। अरोड़ा ने इसे इनेलो सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का फैसला बताते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ चौटाला का पत्र पढ़कर सुनाया है। चौटाला शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं और पैरोल पर 2 सप्ताह के लिए जेल से बाहर हैं। इससे पहले पार्टी ने हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला और उनके भाई युवा नेता दिग्विजय चौटाला को अनुशासनहीनता का दोषी पाते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया था। दोनों अजय चौटाला के पुत्र हैं। दिग्विजय ने BBC को बताया,
पहले तो जो हमने किया है वो तो एक कॉन्स्पिरेसी है, वो समझ इस हिसाब से आ रही है कि मेरे और दुष्यंत जी के लेटर तो हमने जारी किए मगर अजय चौटाला जी के का जो लेटर था उसे जारी नहीं किया गया। तो स्पष्ट ही है कि कोई इस तरह का लेटर नहीं है, कोई इस तरह की बात चौटाला साहब ने नहीं की। कल रात को एक साजिश रचित कर लेटर टाइप किया है अभय सिंह जी के इशारे पर, कॉन्स्पिरेसी है, इसका जवाब जनता देगी।
अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं और हरियाणा में अगले साल ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक मुद्दों के जानकार परिवार में चल रहे इस घमासान को कैसे देखते हैं? वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक।
सुलह की अब कोई संभावना नहीं है, अलग रास्ते हो गए हैं। पार्टी को कोई फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। अभी घमासान खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है।
अब वो 17 तारीख को बैठक करेंगे, उन्होंने वो कुछ पार्टी से लोगों को निकालेंगे और फिर नए सिरे से दोनों को अपना एक तरह से आधे आधे बट जाएंगे, तो फिर संगठन को मजबूत करने के लिए इतना वक्त कहां है चुनाव तक।
एक बात तो तय है, लगभग 14 साल से सत्ता से बाहर इनेलो अगर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार में चल रही तकरार को रोकना होगा। अरविंद छाबड़ा, बीबीसी चंडीगढ़।
और अब बात करते हैं इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के भारी भरकम रॉकेट GSLV-MK3 का, जिसका कल सफल प्रक्षेपण किया गया। संचार उपग्रह GSAT-29 को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचे इस रॉकेट को बाहुबली नाम दिया गया है, लेकिन इसे बाहुबली कहने की क्या वजह है और भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए ये कितना अहम है? बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने यही सवाल विज्ञान और अंतरिक्ष मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से पूछे।
भारत ने जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark-3 का लॉन्च किया, उसका भार था 641 टन, मतलब 5 फुली लोडेड बोइंग जंबो जेट जो होते हैं उसके बराबर उसका भार था। ये इतना बड़ा और भारी भरकम रॉकेट है कि इसको कभी कभी मैं बाहुबली का ही नाम देता हूँ, और इसरो ने भी इसका नाम एक बार बाहुबली दिया था, क्योंकि ये भारत का हैवीएस्ट रॉकेट है, बहुत ताकतवर है, और इसने अंतरिक्ष में GSAT-29 उसको अपनी ऑर्बिट में छोड़ दिया।
ये जो रॉकेट गया है अंतरिक्ष में, क्या काम करेगा ये भारत के लिए?
देखिए, ये जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark-3 है, ये अब डेवलपमेंट फेज से ऑपरेशनल फेज में पहुंच गया है। आने वाले टाइम में यही वो रॉकेट है जिससे भारत का Chandrayaan-2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इसी से भारत अपना गगनयान मिशन, जिसमें कि अंतरिक्ष में इंडियंस को भेजा जाएगा, वो कामयाबी से करने की उम्मीद करी जाएगी। तो ये रॉकेट जो है बड़ा मील का पत्थर है भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए।
और साथ में मैं कहीं पढ़ रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम करेगा, वो सब क्या है?
इसमें एक सैटेलाइट है GSAT-29। अब ये सैटेलाइट जो है बड़ा उमदा किस्म का हाई थ्रूपुट का सैटेलाइट है, इससे कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक बड़ा स्पेशल कैमरा है जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर पैनी नजर रखी जा सकती है, खासकर अगर शिप्स जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में या अरेबियन सी से होती हुई भारत की तरफ आती हैं तो उन पे नजर रखी जा सकती है। इसको जो कैमरा है इसको GOI बोल रहा हूं मैं, और इसमें कुछ स्पेशल माइक्रोवेव के कम्युनिकेशन के भी इक्विपमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। देखा जाए तो रॉकेट और सैटेलाइट दोनों उमदा किस्म के भारत के बने हुए थे और भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए एक बड़ी कामयाबी हुई।
वरिष्ठ पत्रकार पल्लव बागला से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी। और अब एक नजर दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। हमारी सहयोगी कमलेश अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं। कमलेश, श्रोताओं को बताएं कि रफाल मामले के सिवा और किन खबरों को अखबारों में जगह मिली है?
जैसे कि अभी पिछली रिपोर्ट थी GSAT-29 को लेकर, उसको कई अखबारों ने कवर किया है। बाहुबली GSLV Mark-3 D-2 उसको बाहुबली नाम दे के इन्होंने बताया है। इसके अलावा बहुत तस्वीर दी गई है, पूरी उड़ान भरने की तस्वीर है। और हम देखिएगा इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा भारत के गणतंत्र दिवस पर आ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से उसने लिखा है कि राष्ट्रपति ने न्योता स्वीकार कर लिया है जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखबार में सबसे नीचे खबर दी है जिसमें एक तस्वीर है जिसमें कुछ महिलाएं हैं वो रेलवे ट्रैक पर छठ पूजा के दौरान सूरज को अर्घ्य दे रही हैं। तो उसने लिखा है कि अमृतसर में जो दुर्घटना हुई थी रेलवे ट्रैक की, उसके बावजूद भी सबक नहीं लिया गया और ये त्यौहार भी रेलवे ट्रैक पर मनाया जा रहा है।
कुछ अखबारों में छठ पूजा के दौरान दो मौतों की भी खबर है
जी। अक्सर हो जाता है त्योहारों में कुछ इस तरह की दुख भरी खबरें भी आ जाती हैं। और हम अगर देखें तो अमर उजाला में थोक महंगाई 4 महीने में उच्चतम स्तर पर, ये खबर दी गई है कि खाने पीने के सामान के दाम में कमी के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से थोक महंगाई 4 माह के उच्चतम स्तर यानी कि 5.28% पर चली गई है
जी। और एक खबर जनसत्ता में है जिसमें कहा गया है कि श्री रामायण एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन शुरू हुई है जो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से जाएगी और अयोध्या से होती हुई ये चेन्नई पहुंचेगी और उन सभी मुख्य जगहों पर जाएगी जहां माना जाता है कि राम के चरण पड़े थे जी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। वक्त हो चला है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 11वें आम चुनाव होने जा रहे हैं। پچھلی بار مکھیہ وپکشی دل خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے چناؤں کا بہشکار کر دیا تھا اور شیخ حسینہ کی بنگلہ دیش عوامی لیگ لگاتار دوسری بار ستہ میں آ گئی تھی۔ لیکن اس بار بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی چناؤ لڑ تو رہی ہے مگر اس کی پرمکھ نیتا خالدہ ضیاء فی الحال جیل میں ہیں۔ ایسے میں بنگلہ دیش کے چناوی حالات کیسے ہیں اور وہاں کن مدوں پر بات ہو رہی ہے؟ دنیا جہان میں انہی سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کی بی بی سی سنواددتا آدرش راٹھور نے۔
دنیا جہان، پورو دشا میں بھارت کے پڑوسی بنگلہ دیش میں عام چناؤ ہونے جا رہے ہیں۔ 1947 میں بھارت کے وبھاجن کے بعد پوروی پاکستان کہلایا جانے والا بنگلہ بھاشی علاقہ سال 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش نام سے نیا ملک استتو میں آیا۔ بنگلہ دیش کی استھاپنا لوکتانترک دیش کے روپ میں ہوئی مگر لوکتنتر ابھی تک یہاں جڑیں نہیں جما پایا ہے۔ 1975 میں شیخ مجیب الرحمان کی ہتیا اور تختہ پلٹ کے بعد 15 سال تک یہاں سینے شاسن رہا اور لوکتنتر کی صحیح معنوں میں استھاپنا 1990 میں ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی یہاں خوب راجنیتک اٹھا پٹک ہوئی۔ بنگلہ دیش کی راجنیتی میں دو بڑے اور پرمکھ چہرے ہیں، بنگلہ دیش عوامی لیگ کی شیخ حسینہ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی خالدہ ضیاء۔ مگر کبھی عوامی لیگ نے چناؤ کا بہشکار کر دیا تو کبھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے۔ دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے بھاردواج بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا رہی۔
13واں سمویدھان سنسودھن میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ویوستھا کی گئی تھی، 15واں سمویدھان سنسودھن میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ جو بھی بنگلہ دیش میں چناؤ ہوں گے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں گے۔ 2014 کا جب الیکشن ہوا تب یہ پھر ایک سوال اٹھا کہ بھائی اب یہ جو چناؤ ہوگا وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں گے، تو الیکٹڈ کون ہوگی؟ جو سطح میں ہے یا کوئی نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی، لیکن بی این پی نے قریب 150 سیٹیں ان اپوزڈ ہو گئی اور اس میں عوامی لیگ دوبارہ سطح میں آگی 10ویں پارلیمنٹری الیکشن میں۔
اس بار ہو رہے 11ویں عام چناؤ میں جہاں بنگلہ دیش عوامی لیگ لگاتار تیسری بار ستہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں مکھیہ وپکشی دل بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی انی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ بندھن کر کے چناؤ جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پچھلی بار 2014 میں عام چناؤ ہوئے تھے تو وپکشی پارٹی بی این پی نے ان کا بہشکار کر دیا تھا۔ اس بار کافی آنا کانی کے بعد وپکشی دل چناؤ میں حصہ لینے کو تیار تو ہوئے ہیں مگر انہوں نے ڈیٹس آگے بڑھانے کی مانگ کی تھی، جسے چناؤ آیوگ نے مانتے ہوئے طے شیڈیول سے ایک ہفتہ بعد یعنی 30 دسمبر کو چناؤ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
بنگلہ دیش میں جو نیشنل چناؤ ہوں گے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے تحت ہونے چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنلٹی کی بات کرتی ہے اور اپوزیشن کہتی ہے اس میں الیکشن کو مینیج کرنے کا اور فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے کے زیادہ سب زیادہ سمبھاونا ہے۔ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی دو تین ڈیمانڈ ہے، پہلی ڈیمانڈ ہے کہ جو چناؤ ہو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت ہو یا نیشنل گورنمنٹ کے تحت ہو۔
لیکن جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس بار بنگلہ دیش میں حالات تھوڑے بہتر ہوتے دکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے اچھایوکت رہے دیو مکھرجی اسے بنگلہ دیش کے لوکتنتر کے لیے ایک اچھا سنکیت مانتے ہیں۔
یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الیکشن میں وہاں کے جو راجنیتک دل جو ہے وہ انش گرہن کر رہے ہیں، اینڈ کیونکہ ڈیموکریسی میں پارٹیسپیشن بہت ہی ضروری ہے۔
دراصل مکھیا سمسیا آ رہی ہے پورو پردھان منتری اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی نیتا خالدہ ضیاء کو لے کر، جنہیں اس سال بھرشٹاچار کے وبھن معاملوں میں دوشی پایا گیا ہے اور وہ جیل میں بند ہیں۔ ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ خالدہ کو راجنیتک دربھاونا کے تحت پھنسایا گیا ہے اور انہیں رہا کرنا چاہیے۔ پروفیسر سنجے بھاردواج بتاتے ہیں کہ اس استھتی کا بنگلہ دیش کی راجنیتی پر کیا اثر پڑا ہے۔
جو خالدہ ضیاء پہ جو آروپ لگے ہیں اور جو کنوکشن ہوا ہے 10 سال کا کرپشن کے کیس کو لے کے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو یہ سارے چارجز ہیں ڈراپ ہونے چاہیے اور ان کو جیل سے رہا کر دیا جانا چاہیے، جو کہ مجھے سمبھاونا یہ لگتی نہیں ہے کیونکہ یہ جوڈیشری کا معاملہ ہے، یہ کورٹ کا معاملہ ہے۔ ان کا بیٹا جو طارق رحمان ہے وہ لندن میں ہے، ان پہ بھی کیسز ہیں، ان کو بھی ایک طریقے سے بھگوڑا گھوشت کیا گیا ہے، اگر وہ بھی آتے تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ لوگ ڈائریکٹلی چناؤ لڑیں گے، لیکن چناؤ انہیں کے نیتتو میں لڑا جائے گا۔ فخرول احمد ایکٹنگ جنرل سیکرٹری ہے، وہ بیسیکلی ابھی ڈیفیکٹو लीडर है वही चुनाव कमान को संभाले हुए हैं।
चुनावों में मुख्य मुकाबला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और खालिद अजिया की पार्टी बीएनपी के बीच है। देव मुखर्जी बताते हैं कि दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क है और दोनों का जनाधार भी अलग है।
इस्लामिक कट्टरपंथियों को जब पिछले पहले जब बीएनपी सरकार में थे वो तो उनको पूरी मदद दे रहे थे, जब से ये अवामी लीग की सरकार आई है वो पूरी अपने वो कोशिश जारी रखे हैं कि इनको दबाया जाए और उनको कुछ सक्सेस भी मिली है इस बारे में। और बीएनपी के साथ जमात के और इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ उनकी जो एसोसिएशन है ये बहुत पुरानी बात। शेख हसीना का जो अवामी लीग है उनको हम लेफ्ट विंग तो हम नहीं कर सकते हैं, हाँ वो दूसरी पार्टी जरूर ज्यादा राइट विंग है।
शेख हसीना 2009 से ही प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई है, ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? जेएनयू के प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी भी टक्कर देने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है।
माहौल खालिदा जिया का भी है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएनपी है और खालिदा जिया है ये एक अभी वीक पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है। इनके जो 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 मास बेस है वो खत्म होता चला जा रहा है क्योंकि अब ये ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इनके साथ इनके पास में लीडरशिप क्राइसिस है, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है। अवामी लीग एक मास बेस पार्टी है।
बांग्लादेश में अब तक हुई राजनीतिक उठापटक का नतीजा ये रहा है कि देश असली मुद्दों से भटकता हुआ नजर आया है। यहाँ कट्टरपंथ का उभार देखने को मिला है। नतीजा ये रहा कि 2014 से 2017 तक ब्लॉगर्स, नास्तिकों और सेक्युलर बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया, कईयों की हत्या भी हुई। देव मुखर्जी बताते हैं कि ऐसे तत्वों को राजनीतिक शह भी मिली थी, लेकिन अब ये सिलसिला बदला है।
बांग्लादेश में एक जो प्रॉब्लम जो था 40 साल का जो प्रॉब्लम था, माहौल जो फैला हुआ था कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में है तो आपको इस पे एक रिहा मिल जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ये सरकार ने जो किया है मेरे विचार में इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो जो वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल में 71 में जिन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर जो अत्याचार किया था उसको उनको सजा मिला है। जो लोग बीएनपी के मंत्रिसभा में जमात के मंत्री थे दे हैव बीन हैंग्ड।
ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश की जनता का मूड क्या है? क्या शेख हसीना विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगी या जेल में बंद खालिदा जिया के प्रति सहानुभूति से उनकी पार्टी को फायदा मिलेगा? प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि दोनों पार्टियों के पास अपने अपने फायदेमंद पहलू हैं। वहीं बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रह चुके देव मुखर्जी कहते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर देखें तो शेख हसीना का काम अच्छा रहा है, लेकिन मतदाताओं के रुख को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो है अब इसको मुकाबला करना चैलेंज इज नॉट ओवर, ये लोग हैं। और इकोनॉमी बेसिकली इससे इकोनॉमी वो जब ऊपर जाएगा तो सरकार उसी को वापस आना चाहिए।
बांग्लादेश की गिनती दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में होती है। बांग्लादेश में गरीबी भी बहुत है, मगर उसने कुछ मामलों में पिछले कुछ समय में सुधार भी किया है। पिछले कुछ सालों में उसने जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम की है और साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मगर इस देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, राजनीतिक अस्थिरता और इसके बीच बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ से निपटना। ऐसे में ये चुनाव बांग्लादेश के लिए ही अहमियत नहीं रखते, बल्कि पूरे विश्व समुदाय की नजर इन पर टिकी हुई है।
दुनिया जहान की ये कड़ी आपको कैसी लगी? आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
ब्रिटेन में कैबिनेट ने यूरोपीय संघ से बाहर जाने से संबंधित समझौते के मसौदे पर अपनी सहमति दे दी है। 5 घंटों तक चली कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से 9 साल बाद एरिटेरिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। एरिटेरिया पर सोमाली के जिहादी समूह अल शबाब का समर्थन करने का आरोप था। गजा के साथ संघर्ष विराम के फैसले के विरोध में रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। इजरायली सरकार ने सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच 2 दिनों से चल रहे संघर्ष को रोकने का फैसला लिया है। अमरीकी ब्रॉडकास्टर फॉक्स न्यूज ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ CNN के मुकदमे का समर्थन किया है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम के 7:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।